नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत ओशो रेडियो में। ओशो रेडियो जो कि ओशो और ओशो के चारों तरफ हंसते गाते नाचते और हाँ शून्य में उतारते प्रोग्राम से बनता है। ओशो एक जगह हमें चैलेंज करते हैं कि हम एनलाइटनमेंट में भी जैज म्यूजिक के साथ उतरेंगे। सो हियर वी गो।
कोई हृदय को चुराने आ गया है, इसलिए तो हमने भगवान को एक नाम दिया हरि। हरि का अर्थ होता है जो हृदय को चुरा ले, हरण कर ले।
आज के प्रोग्राम में डिस्कोर्स विरहनी मंदिर दियाना बार वॉल्यूम नंबर 10 से लिया गया है, जिसमें ओशो परम के अनुभव को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता, इसके बारे में हमें बता रहे हैं।
छठवां प्रश्न, उस परम प्रिय का निर्वचन क्यों नहीं हो सकता है? जिसका अनुभव हो सकता है उसका निर्वचन क्यों नहीं? यह बात महत्वपूर्ण है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है, अति प्राचीन है। यह प्रश्न सदा सदा पूछा गया है। पश्चिम के एक आधुनिक दार्शनिक लुडविग विटगेंस्टीन ने इस प्रश्न को बहुत प्रगाढ़ता से फिर इस सदी में उठाया था कि जो अनुभव किया जा सकता है वह निश्चित ही कहा जा सकता है, और जो कहा नहीं जा सकता वह अनुभव ही नहीं किया गया होगा। लेकिन विटगेंस्टीन सही नहीं, ऐसे भी अनुभव हैं जो अनुभव तो होते हैं मगर कहे नहीं जा सकते। शायद विटगेंस्टीन ने किसी को कभी प्रेम नहीं किया, दार्शनिक तार्किक करते भी नहीं, ऐसी झंझटों में पड़ते भी नहीं। शायद विटगेंस्टीन ने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, अन्यथा उसे पता चल जाता। साधारण जीवन में भी एक स्त्री के तुम प्रेम में पड़ जाओ या एक पुरुष के, और उसे भी कहना मुश्किल हो जाता है। प्रेम क्या है, कौन कब कह पाया है? प्रार्थना तो और आगे की बात है, परमात्मा तो और आगे की बात है, लेकिन प्रेम को ही कौन कह पाता है? जिस स्त्री के सौंदर्य से तुम मुग्ध हुए हो, उसके सौंदर्य को शब्दों में कहां बांध पाते हो? एक स्त्री का जो क्षणभंगुर है, जैसे तुम क्षणभंगुर हो, जो अभी है और कल नहीं हो जाएगी, और जिसका यौवन जो आज बड़ा उद्दाम है और आज बड़ा प्रगाढ़ है, कल विदा हो जाए, पानी का बबूला है, पानी के बबूले पर चमक गई सूरज की किरण है, पानी के बबूले पर चमकी सूरज की किरण ने छोटा सा इंद्रधनुष पैदा कर दिया है। लेकिन नहीं, एक स्त्री का सौंदर्य भी कहां बंध पाता शब्दों में, एक पुरुष का सौंदर्य कहां बंध पाता शब्दों में? छोड़ो स्त्री पुरुष को, क्योंकि स्त्री पुरुष फिर भी विकास का अंतिम चरण है। एक फूल का सौंदर्य कहां बंध पाता शब्दों में, कौन कब कह पाया? बड़े महाकवि टेनिसन ने कहा है, अगर एक फूल को मैं कह पाऊं पूरा का पूरा, तो उस फूल के कहने में ही सारे अस्तित्व के संबंध में वक्तव्य हो जाए। एक फूल को अगर कह पाऊं पूरा का पूरा, जितनी गंध उसकी, जितना रंग उसका, जितना रस उसका, जितना सौंदर्य उसका, लेकिन कहां हम कह पाते? फिर जाने दो, फूल भी जरा रहस्य में, किसी ने तुम्हारे मुंह में बतासा रख दिया, उसकी मिठास कहां कह पाते हो? अनुभव तो होता है। और यह मत सोचना कि तुम कहने लगे मीठा मीठा तो तुमने कह दिया। कहने का मतलब यह होता है कि जिसने कभी मिठास नहीं देखी उसको समझा पाओ, तब कहा। अगर बुद्ध कबीर से कहें और कबीर समझ जाएं, यह कोई कहना ना हुआ। कबीर यारी से कहें और यारी समझ जाएं, यह कोई कहना ना हुआ। आंख वाले आंख से प्रकाश की बातें करें, यह कोई कहना ना हुआ। कहने का तो मजा तब है जब आंख वाला बोले और अंधा समझे। निर्वचन का क्या अर्थ होता है? निर्वचन का अर्थ होता है जिसने जाना वह बोले और जिसने नहीं जाना वह समझे, तो निर्वचन। तुम समझ लेते हो किसी ने कहा मीठा, तुम समझ गए कि क्या अर्थ है, मगर कैसे समझे तुम? शब्द से समझे? मीठे शब्द ने तुम्हें कुछ मिठास दी? नहीं, तुमने भी बतासे खाए हैं, तुमने भी बतासों का स्वाद लिया है, सो तुम जानते हो कि मीठे शब्द का क्या अर्थ है। अर्थ शब्द में नहीं है, तुम्हारे अनुभव में, इसलिए मीठा शब्द सार्थक मालूम होता है। लेकिन उस आदमी को कहो जिसने मिठास जानी नहीं, समझो एक छोटा बच्चा पैदा हो, तभी हम उसकी जीभ में मिठास को अनुभव करने वाले जो तंतु हैं उनको बिजली का शॉक देके खत्म कर दें। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ अड़चन नहीं। पूरी जीभ मिठास का अनुभव नहीं करती, जीभ का कुछ हिस्सा है जो कड़वाहट का अनुभव करता है, कुछ हिस्सा है जो मिठास का अनुभव करता है, कुछ हिस्सा है जो खटास का अनुभव करता है। जीभ पूरी की पूरी सारे अनुभव नहीं करती। इसलिए कभी तुम देखना, अगर कड़वी दवा तुम पीते हो या कड़वी दवा की गोली तुम खाते हो, तो तुम्हें चाहे ख्याल में हो या ना हो, कड़वी दवा की गोली जब भी कोई निकलता है तो उसे जीभ के बीच में रखता है। अब की दफे तुम ख्याल करना, अनजाने ही करते रहे होगे, जीभ के बीच में रखते हो, क्योंकि बीच में कड़वाहट का अनुभव नहीं होता, और फिर जल्दी से पानी गटक जाते हो, क्योंकि जीभ का जो आखिरी हिस्सा है उसको अगर गोली छुए तो कड़वाहट का अनुभव होता, वही कड़वाहट के तंतु है। और ये तंतु तो बड़े सूक्ष्म है, ये बड़े जल्दी मारे जा सकते हैं, बुखार में मर जाते हैं, बिजली के शॉक की तो जरूरत क्या है? एक 8-10 दिन बुखार आ गया, फिर स्वाद नहीं मालूम होता, क्योंकि वो तंतु बड़े सूक्ष्म है और नाजुक है। हम एक बच्चे के साथ ये प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चा पैदा हो और उसके जितने तंतु हैं मिठास को अनुभव करने वाले, उनको हम साफ ही कर दें, उनकी प्लास्टिक सर्जरी कर दें, उनको निकाल के अलग ही कर दें, जीभ को छील दें, फिर तुम कहना इससे कि बतासा मीठा है। वो कहेगा कुछ और कहो, इतने से कुछ नहीं होता। मीठा यानी क्या? मीठे से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम भी बड़े हैरान होगे कि मीठे से क्या मतलब बताना है। मीठा यानी मीठा, वो कहेगा इससे कुछ हल नहीं होता, ये तो पुनरुक्ति है, मीठा यानी मीठा, इसमें क्या हल हुआ, जरा समझा के बताओ। क्या समझा के बताओगे? नहीं, अनुभव होते हैं और फिर भी निर्वचन नहीं हो पाता, और जिन अनुभवों का निर्वचन हो जाता उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वो सामान्य अनुभव है, सभी को उनका अनुभव हो रहा है। लेकिन परमात्मा का अनुभव तो बड़ा असामान्य अनुभव है, कभी कभार इक्के दुक्के विरले व्यक्ति को होता है। उस विरले व्यक्ति की मुसीबत समझो, उसने जान लिया, लेकिन अब तुमसे कैसे कहे, गूंगे केरी सरकरा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है वैसा आदमी। और ऐसा भी नहीं कि नहीं बोलता, बुद्ध 42 वर्ष तक बोले मगर ईश्वर के संबंध में एक शब्द न कहा ही नहीं, ईश्वर की बात ही बचाते रहे। तुम पूछो ईश्वर की, वो कुछ और ही उत्तर देंगे, तुम पूछो ईश्वर की, वो कहेंगे ध्यान करो। अभी कोई उत्तर हुआ, तुम भी कहोगे कि हम पूछते हैं ईश्वर की, आप कहते हैं ध्यान करो। हम पूछते हैं जमीन की, आप कहते हैं आसमान की, कोई उत्तर हुआ? मगर बुद्ध भी क्या करे, बुद्ध इतना ही कह सकते हैं, तुम पूछते हो बतासा कैसा, बुद्ध कहते हैं बतासा खाओ, ध्यान यानी बतासा खाओ, बतासा चखो, उसी चखने से स्वाद मिलेगा। इस जीवन के साधारण अनुभव भी किसी का सौंदर्य प्रकट नहीं हो पाता। तुमने अगर प्रेम किया हो तो तुम्हें थोड़ा अनुभव मिलेगा उसका जो अनिर्वचनीय है। कितनी रंगी है फजा, कितनी हसीन है दुनिया, कितना सरसार है जौ के चमन आराई आज। तू इस सलीके से सजाई गई बज्मे गैतोई, तू भी दीवारे अजंता से उतर आई आज। जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो उसे अनुभव होता है, कितनी रंगी है फजा, कितनी हंसी है दुनिया, कितना सरसार है जौ के चमन आराई आज। यही उद्धान रोज तुम इससे गुजरते थे, और आज जब तुम्हारी आंखें प्रेम से भर गई हैं तब तुम्हें लगेगा कैसा उत्सव हो रहा है वृक्षों में आज। यही वातावरण सदा से था, लेकिन आज इसमें एक रस धार बहने लगेगी। यही दुनिया और आज एकदम हसीन हो जाएगी, ऐसी हसीन कि कभी न थी। कितनी रंगी है फजा, कितनी हसीन है दुनिया, कितना सरसार है जौ के चमन आ रही आज। इस सलीके से सजाई गई बज्मे गैती, तू भी दीवारे अजंता से उतर आई आज। और जब भी तुम किसी स्त्री को प्रेम करोगे तुम्हें ऐसा ना लगेगा कि वो स्त्री साधारण, सारी दुनिया उसे साधारण समझे, मगर तुम्हें तो लगेगा कि अजंता की दीवार से कोई अप्सरा की तस्वीर थी जो नीचे उतर आई। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, दुनिया कहेगी साधारण स्त्री हम भली भांति जानते, लेकिन तुम्हारे लिए उस साधारण में आज कुछ असाधारण दिखाई पड़ा। तुम्हारी प्रेम की आंख खुली, आज साधारण साधारण नहीं रहा, आज असाधारण हो गया। हां, विवाह कर लोगे और कुछ दिन इसके साथ रहोगे फिर साधारण साधारण हो जाएगा, क्योंकि इतनी क्षमता तुम्हारी नहीं कि प्रेम की आंख सदा खुली रख सको, वो तो सुहागरात पूरे होते होते ही बंद हो जाती। लेकिन जब तुम्हारी प्रेम की आंख खुली है थोड़ी सी, तब तुमसे कोई पूछे कि वर्णन करो, विवेचन करो, विश्लेषण करो, व्याख्या करो, तुम एकदम गूंगे हो जाओगे, तुमसे कुछ कहते ना बनेगा। कितनी रंगी है फजा, कितनी हंसी है दुनिया, कितना सरसार है जौ के चमन आराई आज। इस सलीके से सजाई गई बज्मे गैती, तू भी दीवारे अजंता से उतर आई आज। रू नुमाई की यह सायत, यह तिही दस्ती, यह शौक, न चुरा सकता हूं आंखें न मिला सकता हूं। प्यार सौगात बफा, नज़्र मोहब्बत तोहफा, यही दौलत तेरे कदमों पे लुटा सकता हूं। कब से तखील में लर्जा था यह नाजुक पैकर, कब से ख्वाबों में मचलती थी जवानी तेरी, मेरे अफसाने का उनवान बनी जाती है, ढल के सांचे में हकीकत की कहानी मेरी, मरहले झेल के निकला है मजा के तखलीक, सही ये पहम ने दिए हैं खद और खाल तुझे, जिंदगी चलती रही कांटों पे अंगारों पर, तब मिली इतनी हसीन इतनी सुबक चाल तुझे, तेरे कामत में है इंसान की बुलंदी का विकार, दुख तरे सहर है तहजीब का सहकार है तू, अब न झपकेगी पलक अब न हटेंगी नजरें, हुस्न का मेरे लिए आखिरी मेयार है तू, यह तेरा पैकरे सीमी ये गुलाबी सारी, दस्ते मेहनत ने सफक बन के उड़ा दी तुझको, जिससे महरूम है फितरत का जमाले रंगी, तरबियत ने वो लताफत भी सिखा दी तुझको, आग ही ने तेरी बातों में खिलाई कलियां, इल्म ने सक्री लहजे में निचोड़े अंगूर, दिल रुबाई का यह अंदाज किसे आता था, तू है जिस सांस में नजदीक उसी सांस में दूर, तेरी हस्ती तेरी मस्ती तेरा जलवा तेरा हुस्न, सौ दिए जलते हैं उमड़ी हुई जुलमत के खिलाफ, लबे सादाब पे छलकी हुई गुलनार हंसी, इस बगावत एक बगावत है यह आईने जराहत के खिलाफ, हौसले जाग उठे सोजे यकीन जाग उठा, निगे नाच के बेनाम इशारों को सलाम, तू जहां रहती है उस अर्ज हंसी पर सजदा, जिन पर तू मिलती है उन राहों को सलाम, आ करीब आ कि यह जूड़ा मैं परेशान कर दूं, तस्न कामी को घटाओं का पयाम आ जाए, जिसके माथे से उभरती हूं हजारों सुबह, मेरी दुनिया में भी ऐसी कोई शाम आ जाए, एक छोटा सा प्रेम, एक साधारण सी स्त्री पुरुष का प्रेम, और सारे शब्द ओछे मालूम पड़ने लगते, तो प्रार्थना की तो बात ही कैसे करें, और फिर परमात्मा वह तो परम प्रिय है, उसके लिए न कोई शब्द है न कोई और अभिव्यक्ति का उपाय और माध्यम है। तुमने पूछा है उस परम प्रिय का निर्वचन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वह परम प्रिय है इसलिए। तुमने पूछा जिसका अनुभव हो सकता उसका निर्वचन क्यों नहीं, क्यों कि उसका अनुभव विरले लोग करते हैं। अनुभव करने वाले दो लोगों के बीच निर्वचन हो सकता है और कहने की भी जरूरत ना पड़े, बिन कहे भी हो सकता है। फरीद और कबीर का मिलना हुआ था, दो दिन तक साथ बैठे रहे, ना कोई कोई बोला ना कुछ चाला, ना कबीर ने कुछ कहा ना फरीद ने कुछ कहा, दोनों के शिष्य तो बड़े आतुर होकर बैठे थे कि कुछ बात होगी कुछ गुफ्तगू होगी इन दो पहुंचे हुए सिद्धों में, कुछ चर्चा होगी, हम पर भी कुछ बूंदाबांदी हो जाएगी अमृत की, इनके बीच कुछ लेन देन होगा तो हम भी कुछ सुन लेंगे, मगर नहीं कुछ बात हुई, एक शब्द नहीं आदान प्रदान हुआ, मिले तो गले मिले, फिर विदाई हुई तो गले में मिलकर विदाई हो गई। जैसे ही दोनों विदा हुए, कबीर के शिष्यों ने कबीर से पूछा कि ये क्या हुआ, आप हमसे तो इतना बोलते, आपकी जवान क्यों खो गई, आप चुप क्यों रह गए। कबीर ने कहा ना समझो, तुमसे बोलता हूं ताकि तुम प्यास से भर सको उस परमात्मा की, मगर अगर फरीद से बोलता तो ना समझी होती, क्योंकि जहां मैं हूं वही फरीद है, वहां बोलने की कोई बात ही नहीं, जो मैंने चखा वही उन्होंने चखा है, उन्हें भी स्वाद पता मुझे भी स्वाद पता, गले मिले उतने में बात हो गई, आंख में आंख डाली उतने में सब हो गया। फरीद के शिष्यों ने भी पूछा कि आपको क्या हुआ, जैसे ही गांव से विदा हुए आप चुप क्यों रहे, हमसे तो इतना बोलते। फरीद ने कहा पागलो, बोल के क्या अपनी फजीयत करवानी थी, वो जो आदमी है उसे पता ही है, उससे बोलना क्या उससे कहना क्या, हम दोनों एक ही सागर में डुबकी मार रहे हैं। अब मैं कहूं कि बड़ा मजा आ रहा है सागर में डुबकी मारने का, तो ये व्यर्थ होगा वक्तव्य, क्योंकि वो भी डुबकी मार रहे हैं उसी सागर में, मेरा और उनका अनुभव एक, मैं भी मिट गया हूं वो भी मिट गए, ये तो जब हाथ में हाथ लिया तभी समझ में आ गया, फिर कहने को क्या बचा था। तो ये विरोधाभास ख्याल में रखना, इस जगत में तीन तरह की वार्ताएं हो सकती। पहली वार्ता जो तुम्हें जगह जगह होती हुई मिलेगी दो अज्ञानियों के बीच, जगह जगह हो रही सिर फोड़ी, एक दूसरे के खोपड़ी में अपना अपना कचरा डाल रहे हैं, बड़ा विवाद है, मैं सही तुम गलत, बड़ी मैं तू तू है, सारा संसार इस वार्ता से भरा हुआ है। दूसरे ढंग की वार्ता एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच, वहां बड़ी कठिनाई। पहली वार्ता में कोई कठिनाई नहीं, न तुम्हें पता है न उसे पता है, दोनों का अनुभव शून्य, इसलिए मजे से बातें करो, ईश्वर के संबंध में बातें करो, मोक्ष के संबंध में बातें करो, कोई अड़चन नहीं। पान वाले भी तांगे वाले भी ब्रह्मचर्चा कर रहे हैं, कोई अड़चन नहीं। अड़चन है दूसरे ढंग की वार्ता में, जब ज्ञानी अज्ञानी से बोलता है, क्योंकि ज्ञानी बोलता कुछ अज्ञानी समझता कुछ, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए अज्ञानी को सुनने का ढंग सीखना पड़ता है, सुनने की कला सीखनी पड़ती, और ज्ञानी को अपनी अभिव्यक्ति को मांझना पड़ता है। इसलिए सभी जानने वाले सदगुरु नहीं होते, जान तो लेते हैं मगर जना नहीं पाते। सभी जानने वाले सदगुरु नहीं होते, फिर कौन जानने वाला सदगुरु होता है? जिसने जाना है और जिसने उस कला को भी ईजाद किया है जिससे अज्ञानियों के अंधेरे में भी थोड़ी सी खबर पहुंचाई जा सके, थोड़ी सी भनक सही, थोड़ी सी ध्वनि जगाई जा सके। सदगुरु का अर्थ होता है ऐसा ज्ञानी जिसने स्वयं तो जाना है, जो दूसरों को जगाने की कला में भी निष्णात है। करोड़ों लोगों में एकाध ज्ञानी होता है, हजारों ज्ञानियों में एकाध सदगुरु होता है। ये दूसरी वार्ता बड़ी कठिन है, अति कठिन है। इस झंझट में बहुत से ज्ञानी तो पढ़ते ही नहीं, जान लिया फिर वो चुपचाप आंख बंद करके रह जाते, फिर वो बोलते ही नहीं, फिर वो चुप्पी साध लेते। कौन झंझट करे, कौन सिर मारे? ये तो महाकरुणा पैदा हो तो ही संभव हो पाता है सिर मारना, नहीं तो जिनको तुम समझाने चले हो वही तुम्हारी गर्दन काटने को तैयार होते हैं। कौन झंझट में पड़े? समझो जीसस अगर चुप रह जाते तो सूली ना लगती, सुकरात अगर चुपचाप बैठा रहता, मस्त रहता अपनी मस्ती में, तो जहर न पिलाया गया होता, और मंसूर ने अगर अनल हक की घोषणा न की होती अज्ञानियों के सामने कि मैं ब्रह्म हूं, कि मैं सत्य हूं, कि बंदे में और खुदा में कोई फर्क नहीं है, बंदा खुदा है, अगर ये घोषणा न की होती, घोषणा की थी कि लोग समझ सके, याद दिलाने के लिए, मगर लोगों ने बदला लिया, हाथ पैर काट डाले, गर्दन तोड़ दी। बहुत से ज्ञानी चुप रह जाते, और मजा यह है कि अज्ञानी भी इन चुप रह जाने वाले ज्ञानियों से बहुत प्रसन्न होते, उनको सूली भी नहीं चढ़ाते, जहर भी नहीं पिलाते। क्यों अज्ञानी उनको सूली नहीं देते? दें भी कैसे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कहें तो अड़चन शुरू हो। और दूसरा, अज्ञानियों को भी इसमें सुख रहता है कि चुपचाप हैं, हमारी जिंदगी में कोई झंझट खड़ी नहीं करते। लेकिन कुछ ज्ञानी करुणावश बोले, पृथ्वी उनके बोलने के कारण सौभाग्यशाली है। इस पृथ्वी पर जो थोड़ी बहुत गरिमा है, गौरव है, वो इन थोड़े से बुद्ध पुरुषों के कारण है जो बोले, जो हर झंझट उठा के बोले, जो उनसे बोले हैं जो उनके दुश्मन हो जाएंगे बोलने के कारण, मगर बोले। बुद्ध ने कहा दो तरह के ज्ञानी होते हैं, एक अरहत और एक बोधिसत्व। अरहत वे जो बोलते नहीं, जान के चुप हो जाते। बोधिसत्व वे जो जानकर जगाने की चेष्टा में संलग्न होते। और तीसरी वार्ता है दो ज्ञानियों के बीच, करनी ही नहीं पड़ती, चुपचाप बैठ गए हो गई। एक वार्ता है दो अज्ञानियों के बीच, बहुत करो बहुत सिरमारी होती, फल कुछ भी नहीं। और एक वार्ता है दो ज्ञानियों के बीच, शब्द उठते ही नहीं, कहने के पहले जो कहना कह दिया जाता है, समझ लिया जाता है। और इन दोनों के बीच में एक वार्ता है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच, वह सर्वाधिक कठिन है और वहीं निर्वचन का सवाल उठता है। अनुभव हैं ऐसे जो कहे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उनके संबंध में तुम्हारी प्यास जगाई जा सकती है, तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की जा सकती है एक अग्नि, एक लपट जो उन अनंत अनंत सूर्यों की तलाश में निकल जाए, तुम्हारे पंखों को फड़फड़ाने की कला दी जा सकती है, तुम्हें हिला के जगाया जा सकता है ताकि तुम उस अनंत की यात्रा पर चलो, ताकि तुम परमात्मा की खोज में लगो। परमात्मा के संबंध में जो भी कहा जाता है वो परमात्मा के संबंध में नहीं कहा जाता, सिर्फ तुम्हारी प्यास को उभारने के लिए कहा जाता है। और तुम्हारी प्यास जग जाए तो उसी प्यास में तुम्हारा अहंकार जलने लगता है, उसी प्यास की लपटों में तुम जल जाते हो, मिट जाते हो, और जहां तुम मिट गए वहां परमात्मा है। मैं का न हो जाना परमात्मा का होना है, मिटो ताकि हो सको। विरहन मंदिर दीना बारी, जलाओ एक लपट, एक दिया अपने भीतर प्यास का, मंदिर हो तुम, ज्योति को जगाओ अपने मंदिर में, वही ज्योति तुम्हें महाज्योति की तरफ ले चलेगी, वही ज्योति एक दिन महाज्योति बन जाती। आज इतना है।
आज के एपिसोड में लिया गया म्यूजिक प्रेम जोशवा, रवि मिलोरेपा और अब आखिर में देवा प्रेमल मीतेन और देवाकांत की एल्बम से लिया गया है। क्या आप जानते हैं ओशो रेडियो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। साथ ही एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
भक्त की ऐसी दशा है जो उसकी मर्जी, भक्त शुद्ध वर्तमान में ठहर जाता, ना उसे पाप है कुछ, ना पुण्य है कुछ। ये बड़ी ऊंची बात है, ये द्वंद्वातीत बात है, ये अतिक्रमण है सारे भेदों का। इस दशा में वर्तमान का क्षण सब कुछ होता है, न पश्चाताप है, न पुण्य का दर्प है। शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भरकर पी लो, ऊंग रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओपरी कुमुद ताकते अनझे क्षण में तुम भी जी लो। देखते हो चांद तारे अभी जी रहे, फूल अभी खिल रहे, नदियां अभी बह रही, सागर अभी उत्ताल तरंगों से भरे, हवाएं अभी गुजर रही वृक्षों से, वृक्ष अभी हरे। न तो वृक्षों को कल की कोई याद है, न आने वाले कल की कोई चिंता है, न चांद तारों को कल का पता है, न आने वाले कल का कोई पता है। ऐसे ही तुम भी जी सकते हो, और ऐसे जीने का नाम ही धर्म है, ध्यान है। शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भरकर पी लो, ऊंग रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओपरी कुमुद ताकते अंजिप क्षण में तुम भी जी लो। सींच रही है ओस हमारे गाने, घने कुहासे में झिपते चेहरे पहचाने, खंभों पर बत्तियां खड़ी हैं सीठी, ठिटक गए हैं मानो पलछिन आने जाने। उठी ललक ही उमगा अनकहनी अलसानी, जगी लालसा मीठी, खड़े रहो ढिंग गहो हाथ, पाहुन मन भाने, ओपरी रहो साथ भर भर कर अंजुरी पीलो। बरसी शरद चांदनी मेरा अंतस स्पंदन, तुम भी क्षण क्षण जीलो। ओपरी कुमुद ताकते अनझिप क्षण में तुम भी जीलो। समर्पण ले आता तुम्हें क्षण में, चिंता गई स्मृति गई कल्पना गई, अचानक तुम पाते हो अपने को अभी और यहां, और अभी और यहां परमात्मा है, अभी और यहां अस्तित्व है। उसी क्षण छलांग लग जाती।
Touch the Thank you.